آکے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رانائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے۔ تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے، تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاسو حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرداہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے بس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں۔ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔
کئی آوازوں کی ایک آواز، ریختہ پوڈ کاسٹ۔
ریختہ کے ناظرین و سامعین کو، جو کہ دنیا بھر میں موجود ہیں، بہت آداب۔ شہر لاہور، شہر فیض اور شہر محبت سے آپ کو محبت بھرا سلام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ ہاشمی، جو کہ فیض کی بہت پیاری بیٹی ہیں، اور ان کا تعارف مجھے ایسے کروانا چاہیے کہ ان کا نام منیزہ گل فیض ہے۔ اور آج ہم ان سے کیا بات کرنے والے ہیں؟ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی کتاب، جس میں انہوں نے 40 سال کے بعد، فیض کے اس دنیا سے چلے جانے کے 40 سال کے بعد، ان سے ایک مکالمہ کیا ہے، ان سے کچھ باتیں کی ہیں۔ اس کتاب کا عنوان ہے کانورسیشنز ود مائی فادر، 40 Years On اے ڈاٹر رسپونس۔ تو آئیے منیزہ گل فیض سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کا خیال کب، کیوں اور کیسے آیا۔ آداب۔
آداب، بہت شکریہ، اور ریختہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، دعوت دی، اور میں آج کچھ باتیں ان کے سامعین سے اور ان کی آڈینس سے کروں گی۔
بالکل، ہم ناظرین سامعین دونوں سے باتیں کریں گے۔ اور آپ سے پہلا سوال جو ہر سننے اور دیکھنے والے کے ذہن میں اس وقت ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب جس کا انگریزی میں نام ہے، جو میں آپ سب لوگوں کے سامنے لوں گی، کانورسیشنز ود مائی فادر، 40 Years On اے ڈاٹر رسپونس، تو یہ کتاب لکھنے کا خیال کب، کیسے اور کیوں آیا؟
فیض صاحب نے مجھے بہت سے خط لکھے، کیونکہ فیض صاحب مجھ سے اور خاندان سے دور رہتے، کبھی جیل میں، کبھی اور سفر اپنا، کوئی کانفرنسز، کوئی سیمینارز، اور پھر وہ ایسا وقت آیا جب وہ کوئی 7-8 سال اس ملک سے خود دور رہے، کیونکہ یہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو وہ سیلف ایگزائل میں چلے گئے اور بیروت میں رہے، اور دنیا کے بہت سے مختلف ممالک میں رہے، تو وہاں سے مجھے خط لکھتے رہے۔ خط لکھنے کا انہیں، میں سمجھتی ہوں، شوق تو نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن وہ میرے خیال میں انہیں مزہ آتا تھا، کیونکہ وہ ایک طریقہ تھا جس میں وہ ہم سب لوگوں سے ایک رشتہ رکھتے تھے۔ اور یہ صرف خط مجھے نہیں، میری ہمشیرہ کو اور میرے بچوں کو اور اس کے بچوں کو بھی، تو میرے بچوں نے وہ جو 6-7 سال گزارے ان کے بغیر, وہ ان خطوں کے ساتھ ان کا ایک رشتہ رہا. اتنی دیر کے بعد کیوں یہ خط میں نے سنبھال کے رکھے؟ وقت گزرتا گیا, نوکری, بچے, ذمہ داریاں, مصروفیات وہ رہیں. اور پھر جب میں اب جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک سینئر سٹیزن یا ایک اب ایسے وقت پہ آئی ہوں جب میں ریٹائر ہوئی ہوں, تو میں نے دیکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, ان خطوں کو پڑھ کے ان کو یاد کرنا شروع کیا, تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ خط میرے تو ہیں, مجھے ہی لکھے ہیں, لیکن ان میں ایسی باتیں ہیں جو دنیا کو بھی پتہ چلنی چاہیے, کیونکہ فیض صرف میرا نہیں ہے, فیض دنیا کا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ خط میں نے پھر سوچا, ان کو اکٹھا کیا. لیکن پھر یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بڑی عام سی بات ہو جاتی کہ میں صرف خط لے کے ان کے اور پھر ان کو شائع کر دیتی. اتنے سال گزر گئے ہیں میری زندگی میں, اتنی تبدیلیاں آئیں, اتنے اتار چڑھاؤ آئے, میں چاہتی تھی میں اپنے باپ کو بتاؤں, تو میں نے اس کتاب کے حوالے سے پھر انہیں آج کے دور میں خط لکھنے شروع کیے اور خط لکھے اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا بیتی, میں کہاں کہاں گئی, کس کس سے ملی, میرے دل میں کیا کیا خیال آیا, مجھے ان سے کیا کیا شکایتیں ہیں. تو یہ بھی میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. تو کنورسیشنز ود مائی فادر جو ٹائٹل ہے اس کا, وہی اسی سے ثابت ہو گیا کہ یہ ایک مکالمہ ہے باپ اور بیٹی کا, باپ نے کیا کئی سال پہلے, بیٹی اب کر رہی ہے.
یہ تو آپ نے بڑی آسان زبان میں پرو کے ہمیں بتا دیا کہ اس کتاب میں ایک مکالمہ ہے ایک باپ اور بیٹی کے درمیان. لیکن باپ کوئی عام باپ نہیں ہے, باپ وہ ہے جس کو ہم سب ایک انسان دوست شاعر, ایک امن پسند شاعر کے طور پر جانتے ہیں, ایک ایسے انسان کے طور پر جانتے ہیں جس نے ساری عمر ہر کسی کو اپنا سمجھا اور اپنا بنایا, اور اتنا اپنا بنایا کہ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی وقت ان کا کلام جو ہے وہ ایک نعرے کے طور پر یا ایک نعرے حق کے طور پر بلند کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فیض امن کے شاعر تھے, دوستی کے شاعر تھے,
پیار کے
شاعر تھے,
بالکل,
اور اپنائیت کے شاعر تھے. ایسا کون سے راز ہیں فیض کی شخصیت کے بارے میں, فیض کے ایک باپ ہونے کے ناطے جو ظاہری بات ہے صرف آپ جانتی ہیں, تو وہ کون سے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے جو آپ نے اس میں پہلے خفی تھے اور آپ نے اس میں بتائے ہیں وہ سب کو؟
اچھی بات تو کہنی یہ ہوگی کہ میں نے بہت سی باتوں پہ کچھ کچھ پردہ ڈالا, لیکن میں اس قسم کا شخص نہیں ہوں. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کافی جو دل کی بات ہوتی ہے وہ زبان تک لے آتی ہوں. تو یہاں بھی اس کتاب میں بھی میں نے بہت سی ایسی بات کہیں, میں کہیں اس لیے کہتی ہوں ظاہر ہے لکھیں اور پڑھنے والے, جو میرے دل میں تھیں, جو شکایات مجھے تھیں ان سے کہ آپ میرے ساتھ نہیں تھے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی اور آپ دور تھے, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں کس سے مانگتی, مجھے کچھ ایسی جگہ بھی ایسے وقت آئے, میں پاکستان ٹیلی ویژن میں 40-42 سال تک میں نے کام کیا, اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے وہ آج بھی ہے, تو وہاں اور ایک زمانے میں واحد چینل تھا, تو اس کے اوپر جتنی پابندیاں اور جتنا کنٹرول جو کہ آج بھی ہے اس وقت بھی تھا, وہاں آزادی خیال نہیں تھی اور آج بھی ہے, اب فرق اب وقت کے ساتھ ساتھ فرق ہو گیا, وہاں فیض پر پابندی تھی اور میری وہاں موجودگی بہت سے لوگوں کو چپتی تھی. تو میں نے پھر وہ جو ایک باب ہے اس کتاب میں مائی لائف ان ٹیلی ویژن, وہ بھی میں نے بہت ایکسپوز کر کے اور میرا خیال ہے کہ ذرا طریقے تمیز سے لکھی کہ انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے وہ وقت گزارا, وہ 11-10 سال گزارے, اور وہ خط جو ان کا اس کی میں سمجھتی ہوں جواب میں تو نہیں لیکن آیا کہ تم, میں سمجھتا ہوں کہ تم پہ پابندیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک مشکل وقت ہے, لیکن تم سوئچ آف کر لیا کرو, और फिर जो राय उन्होंने दी है स्विच ऑफ करने की भी, हमारा तो यही नुस्खा है। अच्छा फैज़, हमेशा फैज़ मैं नहीं कहते थे, हम कहते थे, और ये मैं समझती हूँ कि ये उनकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा था, उनकी शख्सियत का हिस्सा था कि वो कभी अपने आप को फ़र्द वाहिद नहीं समझते थे, वो दुनिया का एक फ़र्द अपने आप को समझते थे। तो उसमें ये लिखा है उन्होंने कि भी हमारा तो ये नुस्खा है और तुम हमारा नुस्खा अपनाओ, स्विच ऑफ कर लो। ये ख़त पढ़ने वाला है और इस ख़त ने मुझे इतना सुकून दिया कि यार ये तो इतना आसान काम है, फैज़ ने अगर कर लिया तो खैर मैं तो नज़दीक भी नहीं जा सकती, लेकिन ये तो एक आर्ट है, आर्ट है। और इस किस्म के भी दो तीन और जगह जगह वो ख़त अगर आप पढ़ें इस किताब में तो आपको अंदाज़ा होता है कि फैज़ कितने लाइट हार्टेड भी थे, मजाक भी करते थे। उन ख़तों में ये भी एक झलकी आ रही है, और झलकी आ रही है एक बाप की जो बेटी से बात कर रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो ज़रा देर होगी तो लो हमने थोड़ा सूद बढ़ा दिया, हम पैसे भेजने अपनी अम्मा से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस किस्म की प्यार की बातें जो मैं समझती हूँ दुनिया को शायद ये ख्याल ना हो कि फैज़ ये भी एक इमोशंस रखते थे। और फिर ज़ाहिर है, और जो मैंने इसमें पोस्टकार्ड्स भी रखे हैं जो उन्होंने अपने नवासों को लिखे, मेरे दो बेटे हैं और दुनिया के हर कोने से वो पोस्टकार्ड है। और भाई हम यहाँ इस वक्त हेलसिंकी में हैं, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत साफ शहर है, कभी तुम भी आना, तुम भी देखना। तो इस किस्म, और कई दफ़ा मेरे बच्चे जब छोटे थे ज़ाहिर है पूछते थे वेयर इज नाना, ये कौन सी जगह है। तो चलो इसी बहाने फिर मैंने उन्हें बताना और जो कुछ भी, तो ये भी एक कनेक्शन उनका रहता था क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। और ये एक वक्त था, एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने इसका जिक्र बहुत यूँ समझे एक तरह से कैजुअली किया, लेकिन उन्हें महसूस था कि तुम्हारा बचपन तो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं जेल में था, और तुम्हारे बच्चों का बचपन मैं अब इसलिए वहाँ नहीं हूँ क्योंकि वो बाहर थे। तो मेरे ख्याल में उनके दिल में एक कसक थी, तो इसलिए ये इस किस्म की बातें हैं जो कभी पहले लोगों को कहीं भी नहीं मालूम थी। और मैंने ये ख़त जब शायर किए हैं और अपनी भी कहानी लिखी है तो लोगों ने, जो जितने भी मेरे दोस्त भी हैं और भी हैं, बहुत पसंद किया है।
तूफान का दिल है हर कोई दिलदार देखना, आतिश बजा है हर कोई सरकार देखना, आतिश बजा है मिशल रुखसार देखना, गुल हो न जाए मिशल रुखसार देखना, और लौ दे उठे न तुर्रा दस्तार देखना, और जज्बे मुसाफिरान रहे यार देखना, जज्बे मुसाफिरान रहे यार देखना, सर देखना न संग न दीवार देखना, जज्बे मुसाफिरान रहे सितम में कैसे खरीदार देखना, हुए सितम में कहते खरीदार देखना, और हम आ गए तो गर्मी है बाजार देखना।
आपकी बात सुनते हुए मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि नुस्खा हाय वफा एक ऐसी किताब है जो दुनिया में हर शख्स ने तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पढ़ रखी है। और आपकी बात सुनते हुए एक और ख्याल आ रहा था कि खूने दिल में उंगलियां डबो कर आपने शिकवे गिले सब उनके रूबरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। तो काफ़ी जवाब तो उनकी किताब से भी आपको मिल जाते हैं अगर नुस्खा हाय वफा आप खोलें तो। जिन्होंने नुस्खा हाय वफा पढ़ी है उनको तो ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ कि सब मैं किताब को प्रमोट कर रही हूँ जो कि मैं कर रही हूँ, लेकिन नुस्खा हाय वफा पढ़ने के बाद ये किताब पढ़ी तो एक कनेक्शन, एक ताल्लुक आपको नज़र आता है। तो नुस्खा हाय वफा तो शायरी की किताब है हमें मालूम है, आपकी जो ये किताब है कॉन्वर्सेशंस विद माय फादर 40 इयर्स ऑन अ डॉटर रिस्पॉन्ड्स, क्या ये आप बीती है? क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि ये आप बीती हैं। क्या ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है, क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि ये फैज़ की उस ज़िंदगी की कहानी है जो शायद हम सब ने नहीं देखी, जो हमारी ज़ाहिर आँखों से पोशीदा रही। क्या ये सफ़रनामा है फैज़ का और फिर आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाब ऐसे हैं जिसमें आपने अपने कुछ सफ़र का अहवाल बयान किया है। आप फैज़ के नक्शे कदम पर चलती हुई सीरिया गईं, फिर आप फ़लस्तीन गईं, फिर यरूशलेम गईं, फिर आप
कश्मीर
गईं, फिर आप यासर अरफात की कब्र पे भी गईं, और उसके बाद और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जिनका फैज़ ने ज़िक्र किया, और आप उन जगहों पर पहुँची और आपने वो कुछ किया जो आपको ख्याल था कि शायद फैज़ अगर होते तो वो यही करते, या वो ये बात कहते, या वो इस तरह से इस जगह को वो इस तरह से बयान करते। तो सिंफ तो ज़रा हमें बताएं कि क्या सिंफ है इस किताब की, क्या कहेंगे हम?
अगर ये मैं खुद समझ जाऊं तो फिर मैं बहुत कामयाब हो जाऊं, क्योंकि मैं जब लिखती हूं तो बस लिखती हूं एक रवानी में। और जब मैंने किताब शुरू की तो उस वक्त तो मेरा ख्याल ये था कि सिर्फ मैं कुछ ख़त और ऐसी बात करूँगी। वो लिखते 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 कोविड का अल्लाह भला करे अकेले कमरे में बैठ के लिखना जो शुरू किया तो लिखती चली गई। तो हाँ, ये एक बहुत ही कॉन्शियस मेरा एक इरादा था। जहाँ जहाँ मैं गई, उनकी कदमों के निशान मैंने देखे, वहाँ पहुँची, जैसे मुझे लगा जैसे मैं कुछ कर्ज उतार रही हूँ या कुछ, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और अभी हाल ही में मार्च के महीने में मैं अभी इराक़ होके आई हूँ, और सारी ज़ियारात की मैंने ज़ाहिर में गई हूँ और वहाँ हाज़िरी दी है। और ये मुझे पता चला था कि फैज़ नजफ भी गए थे और वहाँ मौला अली के मज़ार पे भी गए थे, और उनके क्या तासुरात थे थोड़े से हल्के फुल्के मैंने इधर से सुने। ये मुझे उस वक्त मालूम नहीं था जब मैं गई थी, लेकिन ये सबको मालूम है कि फैज़ ने एक मरसिया लिखा है इमाम हुसैन का। वो मरसिया मैं ले के करबला पहुँची और वहाँ इमाम हुसैन के रोज़े पे मैंने वो मरसिया सुना और सदक़ा दिया, और इमाम हुसैन से कहा कि जिस शख्स ने आपके लिए लिखा था ये मैं उनका हदीया आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो इस किस्म की मेरी कोशिशें रही हैं। तो ये कहना कि ये मुझे ख़ुद नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि जिस तरह इस किताब में ज़हरा निगाह ने लिखा है, जिसका पेश रफ्स उन्होंने लिखा है, कि मुझे लगता है ये ख़त तुम्हारे पहुंच गए हैं और ये वहाँ बैठ के फैज़ साहब सिगरेट पी रहे हैं, अगर सिगरेट पीने की इजाज़त हो जन्नत में, और तुम्हारे ख़तों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं पढ़ के। तो एक तरह से ये एक कथारसिस कह सकते हैं आप, कि मैं अपने बाप से वो बातें कह रही हूँ जो शायद ज़िंदगी में उनसे कह नहीं सकी, और दूसरी तरफ ये कि शायद मैं अपने पढ़ने वालों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ जो फर्दन फर्दन में हर दुनिया के हर कोने में नहीं किसी को बता सकती। तो ये एक, मैं समझती हूँ किसी हद तक मैंने एक जॉनरा अपना ही बना लिया है, वो मैंने पढ़ने वाले पे छोड़ दिया है कि जिस तरह आप समझें इसको उसी तरह इसको पसंद करें या ना पसंद करें, और इसको कोई टाइटल दे दें। ये टाइटल मैं नहीं दे सकती।
तो ये तो हम पढ़ने वालों पे ही छोड़ेंगे। और दोबारा आपसे बात, आपकी बात सुनते हुए मुझे फैज़ साहब का ही शेर याद आया, कर रहा था हमें जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तो शायद इस किताब को पढ़ते हुए पढ़ने वालों को भी फैज़ साहब हर कदम पे याद आएंगे, और जिस तरह इस तरह बात करते हुए मुझे हर शेर का रेफरेंस याद आ रहा है उनको भी याद आएगा। तो आप सब लोगों से आखिर में मेरा यही पैगाम है कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आप सबके इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, और इससे पहले कि आपसे हम बाकायदा इजाज़त चाहें, एक याद दहानी, ये किताब Amazon पर मौजूद है, और आपकी सहूलत के लिए इस वीडियो के अख्तिताम पर वो लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। इस किताब को ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर पढ़िए, इसलिए कि फैज़ को बहैसियत शायर तो शायद हम सब जानते हैं। आइए हम ये देखें कि फैज़ बहैसियत एक बाप कितने खूबसूरत इंसान थे, और कितना अनहोना सा और कितना अछूता सा ताल्लुक़ था उनका अपनी बेटी के साथ। और ये किताब इसकी एक और ख़ूबसूरती है, और वो ये कि फैज़ साहब ने जो खतूत मुनीज़ा हाशमी को लिखे वो उर्दू ज़बान में थे, और मुनीजा हाशमी ने जो उनको जवाब दिया वो उनकी मादरी जबान यानी अंग्रेज़ी में लिखे गए। तो आपको इस किताब में दोनों फ्लेवर्स मिलेंगे, उर्दू का भी और अंग्रेज़ी का भी, क्योंकि फैज़ साहब के जो खतूत उर्दू में हैं उनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी शाया किया गया है इस किताब में। तो इस किताब को ख़रीदिए, इस किताब को पढ़िए, फैज़ साहब से आप भी मकालमा कीजिए मुनीजा हाशमी की ज़बान में। अल्लाह हाफ़।
सैंसपिट कराची, इतवार 13 फरवरी 1965। प्यारी मीजू जानम, हम सैंसपिट से बोल रहे हैं। आज इतवार का दिन है और फरवरी की 13 तारीख, जो अभी अभी याद आया कि शायद हमारी सालगिरह का दिन है, इसलिए कि और किसी ने याद ही नहीं दिलाया। तो आज हमारा मुसव्विर सादिकैन के यहाँ दिन गुजारने का वादा है। सुबह उठकर बहुत से लोगों को टेलीफोन किया कि कोई साथी चलने को आमादा हो जाए, लेकिन किसी ने हामी ना भरी। आखिर में मैं और तुम्हारी अम्मी अकेले ही यहाँ पहुँचे। ख्याल था कि सादिकैन के अलावा और तो कोई नहीं होगा, वो बैठकर तस्वीरें बनाएंगे और हम पढ़ने लिखने का काम। खैर, करीब आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ से वहाँ तक पुलिस खड़ी है। पता चला कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। फिर एक हट के पास पहुँचे तो सामने बहुत बड़ी बस खड़ी थी और हट के अंदर फर्श से लेकर अर्श तक लड़कियाँ ही लड़कियाँ भरी हुई थीं। सादिकैन ने माजरत करते हुए कहा कि फैज़, ये एक मेडिकल कॉलेज की बच्चियाँ बग़ैर इत्तला के आ गई हैं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। हमने कहा ठीक है, रौनक है। उफ़, कोई हड़बोंग, पतली मोटी लंबी छोटी सफ़ेद काली नीली पीली हर साइज और रंग की न जाने कितनी लड़कियाँ। बीच में किसी ने हमें पहचान लिया और ऑटोग्राफ के लिए नाराए हैदरी बुलंद किया। फिर क्या था, आध पौन घंटा इस मशक्क़त में सर्फ हुआ। अब किसी के पास ना डायरी और ना कागज़, इसलिए तुम्हारी अम्मी का लिखने वाला पैड उनकी नज़र हो गया। अब ये लोग खा पी कर रॉक एंड रोल के रिकॉर्ड बजा रहे हैं, जिस पर तुमको ख़त लिखने को जी चाहा। आज बहुत दिनों के बाद मौसम अच्छा है। मैं और तुम्हारी अम्मी बाहर धूप में बैठे हैं। अंदर हट पर तो दूसरी फौज का कब्जा है, लेकिन धूप बुरी नहीं लगती। हवा में हल्की हल्की ठंडक और धूप में हल्की हल्की गर्मी है, जैसे लाहौर में बहार के मौसम में हुआ करती है। तुम्हारा कॉलेज तो खुल गया होगा, यहाँ पर खड्डा के अलावा बाकी सब कॉलेज अभी भी बंद हैं। खैर, हम तो इस कॉलेजों की गड़बड़ से नाखुश नहीं हैं, इसलिए कि पहले तुम आ गई फिर छीनी आ गई। अब सोचना पड़ेगा कि किस बहाने से फिर तुम्हारे कॉलेज बंद करवाए जाएं ताकि तुम फिर से आ जाओ, वरना तो बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी। ओ, खत लंबा हो गया, बाकी फिर लिखेंगे। बहुत सा प्यार, अब्बू। एक मुनीजा हमारी बेटी है, जो बहुत ही प्यारी बेटी है। हम ही कब उसको प्यार करते हैं, सब के सब उसको प्यार करते हैं। कैसे सबको ना आए प्यार उस पर, है वही तो हमारी डिक्टेटर। प्यार से जो भी जी चुराएगा वो खूब उससे मार खाएगा। खैर, ये बात तो हंसी की है, वैसे सचमुच वो बहुत अच्छी है। फूल की तरह उसकी रंगत है, चांद की तरह उसकी सूरत है। जब वो खुश होकर मुस्कुराती है, चांदनी जग में फैल जाती है। पढ़ने लिखने में खूब काबिल है, खेलने कूदने में कामिल है। उम्र देखो तो 8 साल की है, अक्ल देखो तो 60 साल की है। फिर वो गाना भी अच्छा गाती है, गरचे तुमको नहीं सुनाती है। बात करती है इस कदर मीठी जैसे डाली पे कूक बुलबुल की। हाँ, कोई उसको जब सताता है तब जरा गुस्सा आ ही जाता है, पर वो जल्दी से मान जाती है, कब किसी को भला सताती है। है शगुफ्ता बहुत मिजाज उसका, सारा उम्दा है कामकाज उसका। है मुनीजा की 8 सालगिरह, हर तरफ शोर है मुबारक का। चांद तारे दुआएं देते हैं, फूल उसकी बलाएं लेते हैं। बाग में गा रही है बुलबुल, तुम सलामत रहो मुनीजा गुल। अम्मा अब्बा और बाजी भी, आंटियां और बहन भाई भी, आज सब उसको प्यार करते हैं, मिलके बार बार कहते हैं। सो तो 1000 बार आए, यूं कहो बेशुमार बार आए, लाए हर बार अपने साथ खुशी, और हम सब कहा करें यूं ही, ये मुनीजा हमारी बेटी है, ये बहुत ही प्यारी।
थैंक्स फॉर लिसनिंग टू रेख्ता पॉडकास्ट। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।